जब परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी, मैं चल पड़ी अब कोई भी रोको ना। मेरी सोच को जब परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी, अब रोको ना। मुझे हर विषय मंजूर नहीं, मुझे हर विषय मंजूर नहीं, मंजिल भी अब दूर नहीं। खुद क्षमा मैं जलाऊंगी इन राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा। खुद क्षमा मैं जलाऊंगी इन राहों पे,
ओम शांति। आज जो अभी तक जो श्रृंखला चल रही है रूहानी क्रांति के सूत्र, तो उसका 12वां दिन है और आज की जो मुरली ली गई है 9 अप्रैल 1986 की है। तो टॉपिक है रूहानी सितारा, स्पिरिचुअल स्टार। तो आज के दिन हमारे जो भ्राता जगदीश जी थे, अव्यक्त हुए थे, वो भी एक ज्ञान स्टार थे हमारे इस सूर्य विद्यालय के। इसे ज्ञान सूर्य शिव बाबा है, तो ज्ञान स्टार जगदीश भाई जी थे। उन्होंने फिर अभी जगह चेंज कर दिए, सूक्ष्मदर्शन नया तारामंडल जो स्थापित हो रहा है वहाँ पर जगह ले ली, तो उनका भी यादगार दिन है। तो आज की जो मुरली है 9 अप्रैल, इसमें तारा मंडल के ऊपर बाबा ने चित्रण किया है रूहानी तारा मंडल, और साथ साथ जो स्थूल तारा मंडल है उसमें भी ग्रह नक्षत्र होते हैं, उसका प्रभाव कैसे आत्मा ओवर पड़ता है और प्रकृति पर पड़ता है, और फिर जो धरती के चैतन्य जो तारे हैं ब्राह्मण परिवार के सदस्य कहेंगे या आत्माएं कहेंगे, तो इनका भी प्रभाव सभी मनुष्य आत्माओं पर पड़ता है और प्रकृति पर भी पड़ता है। कैसे? तो हरेक की जो धारणा है उसके अनुसार वो प्रभाव पड़ता है। जो भी बाबा ने जैसे 4 सब्जेक्ट बताए, ज्ञान योग धारणा और सेवा, ये अगर चारों सब्जेक्ट ठीक है तो उनकी स्थिति भी ठीक रहेगी और उनका जो प्रभाव पड़ेगा वो भी अन्य आत्माओं पर जो प्रभाव पड़ेगा वो भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ये खास बाबा ने इस मुरली में चित्रण किया है, और सच्ची सेवाधारी कैसे होंगे उसका भी वर्णन किया हुआ है। तो हम थोड़ा जानकारी के हेतु से धरती का जो स्थूल तारामंडल है पहले उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो स्थूल तारामंडल माना जैसे हम आकाश में देखते हैं तो अनेक ग्रह तारे हैं, लेकिन हम एक अबुझ पहेली है उसको भी हम पूरा नहीं जान पाते। भले वैज्ञानिक पहुँचे हैं लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि ये बहुत माना विस्तृत है। अनेक आकाश गंगाएँ हैं और अनेक आकाश गंगाओं में इनके पूरा ब्रह्मांड बनता है, और ब्रह्मांड तो हम जानते हैं कि परम धाम ही मेन है, लेकिन सभी मनुष्य आत्माएं यहाँ तक नहीं पहुँची है, क्योंकि परमात्मा कहाँ रहते हैं एक अभी तक खोज जारी है। लेकिन ऋषि मुनि भी खोज करते थे कि, लेकिन वो भी नेति नेति कह गए, ज्ञान सूर्य को नहीं पहचान पाए। स्थूल सूर्य को तो सभी पहचान ही पाते, रोज दर्शन होते। तो ऐसे जो स्थूल तारामंडल है इसका भी जो छोर पाना ना असंभव, अंत पाना भी असंभव है। भले वैज्ञानिक लगे हुए जुटे हुए अनेक अनेक, लेकिन इतना दूरी है कि वहाँ जाने तक आयु ही समाप्त हो जाती है ना। इतना दूर है कि वहाँ जा ही नहीं सकते, चाहे कोई भी प्लेन भी भेजेंगे सोलार वाला, लेकिन नहीं जा पाता, इतने माना दूरी है। तो जैसे हम भी सूर्य की और जो वैज्ञानिक ने जो दूरी बताई है 14 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य की, और सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट लगता है, और इसकी ये तो दूरी हुई कि किलोमीटर में गिन सकते। अगर इससे भी जो तारे हैं बहुत दूर दूर आकाशगंगाओं में, तो उनकी दूरी गिनने के लिए फिर प्रकाश वर्ष यूज करते हैं, क्योंकि ये नहीं गिन पाते इस मैंने किलोमीटर में भी नहीं गिन पाते, इतना बहुत दूर है। लेकिन बाबा ने हमें तो सेकंड में पहुंचा दिया परमधाम, सेकंड में हम पहुंच जाते इतना किलोमीटर, प्रकाश वर्ष कितना भी दूर हो। तो जैसे स्थूल जानकारी है, तो जैसे आज का दिन है कौन सा दिन है, बुधवार। तो बुधवार माना आज जैसे अमावस्या है, आज का दिन अमावस्या आती है, माना कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि, यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष 15 दिन और शुक्ल पक्ष 15 दिन। शुक्ल पक्ष जब 15 दिन हो जाते तो पूर्णिमा आ जाती है, तो ये 26 अगली जो 26 मई है उसको आएंगी, और उस दिन पूर्णिमा होगा, और पूर्णिमा है तो उस दिन चंद्रग्रहण है। अगली जो आने वाली जो पूर्णिमा है 26 मई को, हाँ बुद्ध पूर्णिमा भी है, नकेल एक पर जो मेला हर साल जो होता है, लेकिन इस साल शायद कोरोना के कारण नहीं होगा। तो ये चंद्रग्रहण पड़ रहा है, और इसमें शायद भारत में दिखेगा वो मेरे को पता नहीं, बाकी और अगली जो अमावस्या आएंगी फिर एक मास के बाद 10 जून को, उसमें सूर्य ग्रहण होगा, ये मैंने थोड़ा पढ़ा था तो बताया। तो ये माना अमावस्या और पूर्णिमा माना शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये चलते ही रहता है। तो जैसे हमारा जो नज़दीक ग्रह है चंद्रमा, और इसे धरती के आसपास घूमता है, धरती का उपग्रह है, लेकिन इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है क्योंकि नज़दीक होने के कारण। तो इसको हम पूर्णिमा और अमावस्या को माना अनुभव कर सकते हैं। तो जो सागर के किनारे रहते हैं उनको खास ये पता चलता है कि हाँ, तो उस दिन हाई टाइड आता है, ज्वार भाटा, ज्वार माना समुन्द्र की लहरें थोड़ी ऊपर आती है, और भाटा माना जो नीचे जाती है। तो ये 6-6 घंटे का अंतराल होता है, 6 घंटे में ऊपर आ जाएंगी, फिर नीचे जाएंगी, फिर 6 घंटे में ऐसे, वैसे हर दिन होता है लेकिन कम होता है, लेकिन अमावस पूर्णिमा के दिन, क्योंकि जो गुरुत्व बल है यानी चंद्र का, वो अपने ओर खींचता है धरती को, तो ये पानी पर ज़्यादा महसूस होता है, धरती तो खींच नहीं सकता स्थूल, लेकिन वो पानी है तो खींच लेते हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमारे जैसे जीवन पर भी होता है, लेकिन वो हम समझ नहीं पाते। तो वैज्ञानिक भाषा में उसको न्यूट्रॉन सेल्स के ऊपर परिवर्तन होता है बोलते हैं। हाँ, तो इसमें 75% पानी होता है शरीर में। हाँ, तो ये शारीरिक में प्रभाव होते हैं, मतलब प्रभाव पड़ता है शरीर पर, तो स्थूल ग्रह का भी हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जैसे स्थूल का प्रभाव पड़ता है तो सूक्ष्म का भी प्रभाव होता है, माना सूक्ष्म हम चैतन्य का। तो ये जो अमावस्या पूर्णिमा और ये जो गति होती है, ये हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी खुद के आसपास भी घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर होता है, और जब सूर्य के पास आसपास घूमती है तो कितना दिन होता है, 365 दिन। हाँ, तो इसके कारण ये जो एक दूसरे की जो छाया पड़ती है चंद्रमा की पृथ्वी पर, पृथ्वी की चंद्रमा पर, तो ये इसके कारण भी चंद्रग्रहण सूर्य होते हैं, सूर्यग्रहण होते हैं। तो ये हो गया स्थूल का, लेकिन अनेक तारे ग्रह भी है, जैसे बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा मानते हैं, नौ ग्रह मानते हैं इस तारामंडल में। ये जो गैलेक्सी है, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो मंदाकिनी गैलेक्सी मानते हैं भारत में, तो ये एक गैलेक्सी हो जाती है। और फिर ऐसे अनेक 10,000 गैलेक्सी है ऐसा अनुमान है वैज्ञानिक लोगों का, और अनगिनत तारे, माना 2 पर 22 जीरो लगाएंगे इतने तारे, ऐसा उन्होंने अनुमान निकाला है। 2 पर 22 जीरे की गिनती कितनी होती है उसके अनुसार इतने सारे ये आकाशगंगाओं में हैं। तो इस प्रकार ये बेहद में विस्तृत ये आकाशगंगा है। और जैसे ग्रह तारे हैं, जैसे हम कोई कोई पहचान पाते, कोई नहीं पहचान पाते, जैसे शुक्र तारा को पहचान लेते। शुक्र अभी तो पश्चिम में होता है शाम के समय, लेकिन दिखाई नहीं था, जल्दी डूब जाता है। लेकिन अभी जो यहाँ ऊपर ओम शांति भवन से देखेंगे तो ऊपर एक गुरु ग्रह दिखाई देता है, बड़ा ग्रह। और जो बुध है, बुध सूर्य के पास होता है, सुबह सुबह अगर देखते हैं तो देख सकते हैं। और अभी शनि ग्रह भी इधर ही है पूर्व में, और शाम के समय शुक्र तारा वो अभी कुछ दिनों में दिखाई देगा। और जो जो एक जो ग्रह है जो स्थिर होता है वो ध्रुव तारा, तो ध्रुव तारा को ओम शांति भवन के जो रोड है आगे से भी देख सकते हैं, या फिर शांति स्तंभ में अगर हम दक्षिण भाग में जाते हैं टावर नॉलेज उसका गेट है, तो वहाँ गेट पर खड़े रहेंगे तो पहाड़ी के ऊपर जो पहाड़ी है पीछे ओम शांति शिखर, तो वो दिखाई देता है। तो ओम हमारा जो शांति स्तंभ बना है एकदम पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण एकदम एक्यूरेट दिशाओं में बना हुआ है, क्योंकि ये ज्ञान सूर्य शिव बाबा है यादगार, ज्ञान चंद्रमा का यादगार, और हम सभी ये मधुन पूरा चैतन्य तारामंडल है, इसकी परिक्रमा सभी सितारे लगाते रहते हैं। तो ध्रुव तारा का भी जो गायन है शास्त्रों में, इसकी जो तारामंडल है भारत जो भी इसका इन्हें जो भी ऋषि मुनि हुए द्वापर युग में, तो उन्होंने पूरा अपना ये ज्ञान से कनेक्ट किया हुआ है। कहते हैं कि एक बालक था, वो सौतेली मान से अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, तो उसने डांट से कह दिया कि नहीं जाओ तुम तपस्या करो, विष्णु की तपस्या करो, तब मैं आप गोद में लूँगी। मना वो प्यार नहीं करती थी, नफरत करती, तो वो बच्चा हट से चला गया ध्रुव नाम का बच्चा, और वो तपस्या करने लगा। अब विष्णु जी प्रसन्न हो गए बच्चे पर, और वो बोले, वो उसने प्रश्न पूछा, ये क्योंकि मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, ये दुख क्यों है, बहुत सारे प्रश्न। तो जब विष्णु जी आ गए तो प्रश्न खत्म हो गए उसके, तो शायद वो अपने ब्राह्मण परिवार के भी किसी की कहानी हो सकती है। तो यही कहानी वो शास्त्रों में चली गई है संगम युग की, कि विष्णु जी प्रकट हो गए और उन्होंने वो ध्रुव लोक दे दिया उनको, कि हाँ, तो वो उनका ही यादगार हो गया, ध्रुव लोक पर उन्होंने राज किया था। तो इस प्रकार कहानी भी बनाई है, जैसे चंद्रमा की भी कहानी बनाई है, कि चंद्रमा भी देवता के रूप में माना जाता है। और जो भारत के 27 नक्षत्र है, तो ये दक्ष प्रजापति की 84 कन्या थी, उनमें से 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया था, तो उसके आधार पर ये नक्षत्र बनाए 27 नक्षत्र। तो ये माना भारतीय ज्योतिष इसमें कैसे पहुंचा हुआ है भारत। और जो 12 राशियां है हमारे, जो नाम के ऊपर जो राशि होती है, ये जो आकाश में जो जो कुछ खास सितारे हैं उनको अगर जोड़ते हैं तो एक आकृति बनती है। हाँ, तो उनके आकार के इससे उन्होंने राशियां बनाई, तो राशियां पूरी होती है 12। तो जो 12 महीने होते हैं, जैसे भारतीय जो महीने चैत्र वैशाख, इसके आधार पर उन्होंने बनाया हुआ है 12 राशियां। और 12 राशियां में ये परिभ्रमण करता है चंद्रमा, हर माना जो 15 दिन में पंद्रह माने पूरा 30 दिन नहीं होता है, कुछ कम होता है। तो इस जमीन इस समय में वो ये इन राशियों का चक्र लगाता है। और जिस जैसे नामकरण करते हैं ना ज्योतिष लोग, तो यही देखते हैं कि कौन से नक्षत्र में है और कौन से राशि में और कौन सा समय, तो इस आधार से वो भविष्य निर्धारण करते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी हमने जुटाई थी तो वर्णन किया तो ये हो गया स्थूल, लेकिन इसके विस्तार में नहीं जाना है। ये विस्तार में जाएंगे तो फिर और भी उलझन में चले जाते हैं। ये जानकारी रखनी है तू है। तो बाबा ने आज रूहानी तारामंडल के बारे में क्या कहा? स्थूल तारामंडल तो चलता ही रहेगा, चलता है, इसका अंत पा नहीं सकते, लेकिन स्थूल तारामंडल के बारे में जो बताया, धरती का जो तारामंडल चैतन्य तारामंडल, तो बाबा ने इसका जो मुखिया है ज्ञान सूर्य शिव बाबा, जैसे उसका स्थूल का सूर्य है चंद्रमा है, तो यहाँ ज्ञान सूर्य शिव बाबा और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा और हम सभी ज्ञान सितारे हैं। तो बाबा ने आज सभी को कहा कि तुम सभी कौन हो? ज्ञान सितारे हो, सहयोगी सितारे हो, निरंतर सेवादारी सितारे हो और गुणमूर्त सितारे हो, संपन्न सितारे हो, सफलता के सितारे हो। तो ये 6 सितारों का बाबा ने वर्णन किया और एक उम्मीदों का सितारे भी होते हैं, उसका भी वर्णन किया है। हाँ, पुच्छल तारे भी होते हैं जो मन क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं, क्या क्यों कैसे, तो वो पूछना की यादगार पुच्छल तारे में आ जाता है। तो हाँ, वैसे ये 7-8 मुरली चलाई है बाबा ने तारामंडल के ऊपर, तो उसमें भी कई मुरलियों में लक्की सितारे, कईयों में दूर के सितारे, कईयों में नजदीक समीप सितारे। हाँ, तो ऐसे बहुत तारामंडल का वर्णन किया हुआ है चैतन्य तारामंडल का। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा कि जैसे उन जो स्थूल ग्रह हैं तारे हैं, जैसे तारे में सूर्य तारा आता है, बाकी सब ग्रह होते हैं, उनका जैसे प्रभाव पड़ता है आत्माओं पर और प्रकृति पर, तो हम चैतन्य सितारों का भी प्रभाव पड़ता है। तो बाबा ने कहा कि हरेक की चमक के ऊपर होता है, तो कोई ज्ञान की चमक से चमकते हैं, तो कोई योग की चमक, कोई धारणा की चमक, हाँ, तो कोई सेवा के उमंग उत्साह की चमक से चमकते हैं। सभी में ज्ञान योग धारणा सेवा है, लेकिन थोड़ा कम ज़्यादा होता है, लेकिन हरेक कोई कोई विशेष चमक के कारण चमकते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये चमक रूहानी चमक है और इसके आधार से अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो जैसे वो जो दुनिया में जैसे स्थूल रात्रि में जो अंधकार होता है, तब ये सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ भी क्या होता है कि अप्राप्ति का अंधकार हो जाता है। तो सारी दुनिया में जब अप्राप्ति होती है, अशांति होती है, दुख होता है, तो इस समय फिर जो चैतन्य जो सितारे, इनका प्रभाव दिखाई देता है। तो चैतन्य सितारों का प्रभाव अप्राप्ति का अंधकार समाप्त होने के बाद ही दिखाई देता है। तो अभी वर्तमान समय में भी यही चल रहा है कि सारी दुनिया में एक तो अप्राप्ति है, दुख ही है, अशांति है। तो ये इस समय हम ब्राह्मणों का प्रभाव दिखाई देगा। तो अभी वो समय बाबा ने कहा कि आ चुका है, तो इस समय ही हमें वो प्रभाव दिखाना है। तो कैसे दिखाना है? बाबा ने कहा कि रूहानी सितारे के रूप में या ज्योति के रूप में। तो अगर हम जितना अपने को ज्योति स्वरूप समझेंगे, उतना वो प्रभाव दिखाई देगा, या फिर फरिश्ता स्वरूप में जितना स्थित रहेंगे। इसके लिए देह का भान हमें भूलना होगा और देह के भान से परे आत्माभिमानी जब बन जाते हैं, रूहानी स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो ये प्रभाव दिखाई देता है। तो बाबा ने इसके लिए खास कहा कि अभी जो अंधकार का समय है, अप्राप्ति का समय है, इस समय ही हमें ये प्रभाव दिखाना है। और वो आश्चर्य खाएंगे कि कोई सितारे आए और चमत्कार दिखा के गए, माना उनको भी ऐसा अनुभव होगा कि कोई एक रूहानी सितारे आए और हमें संपन्न बना के गए। तो ऐसा भी समय आ चुका है। तो बाबा ने फिर कहा कि ये चैतन्य जो तारामंडल है, तो चैतन्य तारामंडल के जो सितारे हैं, जो अपना प्रभाव आत्माओं पर और प्रकृति पर छोड़ रहे हैं या प्रभाव पड़ता है, तो हमारी स्थिति एकदम अचल अडोल होनी चाहिए। माना कोई भी अचल अडोल होनी चाहिए कि कोई भी ये जो कहा था बाबा ने कि ये पंजाब हरियाणा की जो पार्टी थी उस समय 4 अप्रैल को जो आई थी, 9 अप्रैल, तो उनमें उन पार्टी से कहते हुए कहा था कि अचल अडोल, कोई भी अगर परिस्थिति आ जाती है तो उसमें माना हिलना नहीं है। तो ये स्थिति अगर बन जाती है तो हमारा प्रभाव एकदम अचल अडोल रहेगा। और बाबा ने कहा था कि अनेक जैसे हलचल हो रही है, सिविल वार्स वगैरह होते हैं, उस समय शायद हुआ होगा 86 में, तो उसके कारण वो मुरली चलाई थी कि दुनिया में अनेक उपद्रव करेंगे, लेकिन आपको अचल रहना है, कोई माना डिस्टर्ब भी करे तो भी हमें अचल रहना है, कोई आग लगावे लेकिन आप का काम है पानी डालना, वो लोग आग डालें लेकिन आप लोग पानी डालो, माना सहन करो, ऐसा बाबा ने उस कहा था। फिर बाबा ने सच्ची सेवादारी की निशानी बताया इस मुरली में, तो सच्चे सेवादारी कौन होंगे, त्याग तपस्या और सेवा है, जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति जुड़ी हुई है, ठीक उसी प्रकार सेवा के साथ त्याग और तपस्या जुड़ी हुई है। तो बाबा ने कहा इस मुरली में कि त्याग माना नम्रता और सेवा माना बाप के निश्चय में एकदम नशे में दृढ़, निश्चय और नशे में दृढ़, और ये नम्रता और निश्चय और नशे में दृढ़ता के आधार पर अगर सेवा करते हैं तो वही यथार्थ और सच्ची सेवा है। तो ये सच्ची सेवा धारियों की निशानी इसमें कहा है। और बाबा ने कहा कि अगर कोई भी सेवा करते हैं तो वो सेवा दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करे, या फिर खुद भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी सेवा करते हैं डिस्टर्ब होके तो वो सेवा सेवा नहीं है, ऐसी सेवा छोड़ दो अगर स्थिति नहीं बनती तो, या फिर कई कई जगह हो जाता है ऐसी डिपार्टमेंट में, तो आपस में कुछ कंफर्म करके, हाँ कुछ दिन दूर रह के ज्ञान दे के, मतलब हाँ, तो ऐसी सेवा नहीं करनी है। जब तक संतुष्ट नहीं हो जाए तब तक अपने आप को थोड़ा ज्ञानियों के आधार पर ठीक कर लो, क्योंकि सेवा माना संतुष्टता देने वाली हो। दूसरा अगर छोड़ना नहीं चाहते और वह संत, तो उसमें कुछ तीसरा मार्ग निकालना ही पड़ेगा। तो ये बाबा ने सेवा के ऊपर कहा है। फिर बाबा ने कहा कि सच्ची सेवा, सेवा भाव माना जिस आत्मा की जो चाहना है उस प्रकार उसको प्राप्ति कराना, जैसे किसी को उमंग उत्साह की चाहना है, किसी को खुशी की चाहना है, किसी को शांति चाहिए, सुख चाहिए, उस अनुसार उस आत्मा को देना या प्राप्ति कराना, तो यही सच्ची सेवा है। बाबा ने कहा कि प्रदर्शन समझाना या क्लास कराना ये माना उसमें नहीं आएंगी, ये कॉमन हो गई, लेकिन सच्ची सेवा है कि हर आत्मा संतुष्ट हो जाए हमारे सेवा द्वारा, तो ये सच्ची सेवा है। फिर बाबा ने कहा कि समय, जैसे वो वैज्ञानिक लोग तारे खोजने में समय लगाते हैं, धन लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, पूरा बिजी रहते हैं, उनको खाने पीने की भी माना फुर्सत नहीं है, इतना बिजी रहते हैं। तो ऐसे हम रूहानी जो सितारे हैं या रूहानी जो साइंटिस्ट के, हम भी इसमें बिजी हो जाए कि हमारा समय के भी भान नहीं रहे, माना सबको देना है, खुशी देना है, सुख देना है, शांति देना है, देने में ही हम बिजी हो जाए, तो इससे भी सब संतुष्ट हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा था कि तपस्या जो त्याग तपस्या और सेवा, तो तपस्वी मूर्त आत्माएं हैं, तो तपस्वी मूर्त का जो चेहरा ही सेवा करे, चेहरे द्वारी उनकी ऑटोमेटिक सेवा हो जाती है, और चलन द्वारा और दृष्टि द्वारा, माना कोई भी तपस्वी आत्मा अगर कोई भी वायुमंडल में पहुंच जाए तो वो वायुमंडल परिवर्तन हो जाता है, हाँ दर्शनीय मूर्त बन। हाँ वो बाबा ने कहा है कि आपने जब यहाँ तपस्या की उसका यादगार अभी के जो हठयोगी हैं, हठयोगी भी थोड़ा भी तपस्या कर लेते हैं तो उनके पीछे लाइन लग जाती है दर्शन मात्र के लिए, तो हाँ तो अभी भी जैसे कोई भी प्राप्ति हेतु तो अभी का यादगार है कि अभी बाबा कहते कि तुम बच्चों ने अभी तपस्या की उसकी यादगार अभी कलयुग अंत तक भी चली आती है। फिर बाबा ने कहा था कि सेवा में उमंग उत्साह होना बहुत जरूरी है, माना खुशी खुशी में रहना, जो पार्टियों से कहा था पंजाब हरियाणा की, तो खुशी में रहना है क्योंकि हमें खुशी का सागर शिव बाबा मिला है, तो जो भी प्राप्ति हुई है तो वो अनुभव करना है, पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा है ये अनुभव करना है। और फिर बाबा ने कहा था कि छत्र छाया के अंदर रहना है, अगर छत्र छाया के, बाप की छत्र छाया के अंदर रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अगर थोड़ा भी पाँव निकाला तो फिर माया पकड़ लेगी और हम असुरक्षित हो जाएंगे। बाबा ने फिर अमृत वेले विदाई ली थी, अमृत वेले के समय नहीं 12 बजे के बाद ही हो, तो उस समय बाबा ने सबको गुड मॉर्निंग भी कहा था, गोल्डन मॉर्निंग और डायमंड मॉर्निंग। हाँ तो इस प्रकार ये मुरली में रूहानी तारामंडल का वर्णन है और सच्ची सेवादारी की निशानी है। तो अभी हमें भी अभी जो रूहानी क्रांति लानी है अगर सेवा में या जीवन में, तो रूहानी सितारा बनना पड़ेगा, तो रूहानी सितारा बन के चमकना पड़ेगा, ज्ञान की चमक से, योग की चमक से, सेवा की चमक से, और ये सबको प्रकाश दिलाना होगा, और यही क्रांति पूरे विश्व में छा जाएगी। ये तो सिविल वार होना भी एक ड्रामा में नूंद है, और ये भी कल्याण का पार्ट है, क्योंकि जब होगा नहीं तभी तो सतयुग आएगा ना। तो इस प्रकार से बाबा ने इस मुरली में वर्णन किया है कि चैतन्य रूहानी तारामंडल कैसा है, तो हम सभी इस तारामंडल के चैतन्य सितारे हैं, और हमें सभी को अपना रूहानी प्रभाव दिखाना है, क्योंकि हमारा प्रभाव सारी विश्व की आत्माओं पर पड़ रहा है। हाँ जो नॉलेजफुल होगा, पावरफुल होगा, वो सदा अचल रहेगा, तो ये और अचल अडोल वाले ही स्थिर रहेंगे। तो इस प्रकार से मुरली थी, तो कमेंट्री करेंगे दो मिनट। तो ये रूहानी चैतन्य तारामंडल, हम मधुबन भूमि पर रहते हैं तो ये बहुत अच्छा चांस है। तो मधुबन तारामंडल सारा विश्व जिसको याद करता है, ब्राह्मण परिवार, और यहाँ का प्रभाव पूरे विश्व पर बढ़ता है। तो यहाँ हमारी स्थिति अगर थोड़ी भी डगमग होती है या ढीली होती है तो उसका प्रभाव सभी आत्माओं पर पड़ता है। तो हमारी मेन है कि हमारी स्थिति एक रस अचल अडोल रहनी चाहिए, और इसका हम सभी प्रयास कर भी रहे हैं। और अभी कवायुमंडल भी ऐसा बना है कि सब तपस्या में तीनों जगह, जैसे मधुबन, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन हॉस्पिटल, सभी जगह योग तपस्या भट्टी के कार्यक्रम भी चल रहे हैं, और सभी जगह से पूरे विश्व में ये वाइब्रेशन चल रहा है। और आजकल ऑनलाइन भी भट्टी चली रही है इंटरनेट के माध्यम से, तो सभी वायुमंडल भी अच्छा बन रहा है। और जो कोरोना का जो वायुमंडल बना है दुख और अशांति का, उस वायुमंडल को हम चेंज कर रहे हैं। तो ये अभी हम सभी की जिम्मेवारी बनती है कि हम सबको ये सकाश दें। तो एक ड्रिल करेंगे। मैं आत्मा चैतन्य तारामंडल का सितारा हूं। जिसमें ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा और हम सब सफलता के सितारे, चैतन्य सितारे इस रूहानी चैतन्य तारामंडल में परिभ्रमण कर रहे हैं। मैं ज्ञान सितारा हूं, मैं योग सहयोगी सितारा हूं, निरंतर सेवाधारी सितारा हूं, गुणमूर्त सितारा हूं, मुझसे ज्ञान की चमक निकल रही है, योग की चमक से जगमग हो रहा हूं, गुणों की चमक से चमक रहा हूं, सेवा के मंग उत्साह की चमक से चमक रहा हूं, जैसे जैसे अप्राप्ति का अंधकार छाता जा रहा है, अशांति का अंधकार छाया हुआ है और हम आत्माओं का, रूहानी सितारों का प्रभाव भी इस अंधकार के समय में बढ़ रहा है। और सभी आत्माएं अनुभव कर रही है कि कोई ज्योति या प्रकाशमय शरीर, फरिश्ता शरीर दिखाई दे रहा है, और उस ज्योति के द्वारा, फरिश्ता शरीर द्वारा धरती की आत्माओं पर प्रभाव पड़ रहे हैं। उनके जीवन में सुख शांति आनंद पवित्रता की प्राप्ति हो रही है। उनकी जो भी चाहना है वो पूरी हो रही है। तो अपने जीवन में चमत्कार मान रही कि कोई फरिश्ते हमें सुख शांति दे रहे हैं। अब मैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा जो परम धाम में हैं और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा सूक्ष्मोतन में और मैं धरती के अंतरिक्ष में ज्ञान सितारा और नीचे में धरती दिखाई दे रही है, नीला आकार का एक वेद विस्तृत धरती ग्रह में पांच खंड दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर मनुष्य आत्माएं दुख अशांति और भय से ग्रसित है। मैं सुख शांति पवित्रता शक्ति प्रेम और निर्भयता का सितारा हूँ और जो धरती के पांचों खंड हैं अमेरिका अफ्रीका यूरोप आसिया ऑस्ट्रेलिया इन सभी यहाँ की सभी आत्माओं पर मैं सितारा सुख शांति का प्रभाव डाल रहा हूँ और मैं सितारा एक फरिश्ते के रूप में स्थित हूँ अंतरिक्ष में और ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा की एक सिद्ध में हूँ और मुझसे अनेक फरिश्ते निकल रहे हैं और हर फरिश्ता हर आत्मा के पास जाकर सुख शांति आनंद पवित्रता का दान कर रहा है और जो भी ब्राह्मण आत्मा है उनको सहयोग दे रहा है। तो ऐसे मुझसे अनेक फरिश्ते निकल रहे हैं और धरती के चारों तरफ अनेक फरिश्ते फैल चुके हैं। जैसे 700 करोड़ आत्माएं हैं तो 700 करोड़ ऐसे फरिश्ते चारों तरफ फैल गए हैं सभी देशों में और ये धरती सफ़ेद प्रकाश से प्रकाशित हो गई और यहाँ का दुख अशांति का वातावरण समाप्त हो रहा है। अप्राप्ति का अंधकार खत्म हो रहा है और चारों तरफ नया उमंग उत्साह नवजीवन का संचार हो रहा है। सभी आत्माएं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट कर रही है और खुशनुमा वातावरण बन गया है। और क्योंकि ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा और हम सब ज्ञान फरिश्तों का प्रभाव सारे विश्व पर छा गया है, सभी आत्माएं ज्योति और फरिश्ता रूप का साक्षात्कार कर रहे हैं और चमत्कार समझ रहे हैं कि वहां ये कौन है। और कहां से आए सबकी नजर जा रही है। जैसे यज्ञ के आदि में ब्रह्मा और श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो रहा था और इनका ही इनकी तरफ सब आकर्षित हो रहे थे, ऐसा अभी अंतिम समय में भी फरिश्ता स्वरूप और ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हो रहा है और सभी के जीवन में सुख शांति आनंद पवित्रता शक्ति प्रेम और निर्भयता आ रही है और सब संतुष्ट हो रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।